ज्ञान त्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण राम दास आनंद मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम रामदास दोनोपखां सब विद पूरण काम चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद ओम तारकम तन्मंत्रम रामदास गुरुविष्टितम सदा कालं जपेज्जाप्यं त्रिविदताप विनाशनम् कलिकल्मषनाशायैव प्राणिमोक्षहेतवे दयालु महाराजेन मन्त्रोऽयं वणितपुरा ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोकसाधका तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगींद्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि विभुं पद्मनेत्रं दधानं तुरीयं प्रकाशस्वरूपं नुतं विश्वदेवै श्रुतिज्ञानगम्यं शुभं विश्वनाथं स्तुवे वेदवेद्यं गुरुं रामदासं गुफावासी ज्ञानी गुरुपदनिवासी रविमहारदयन संहारी त्रिदिव प्रतिहारे स्फुटगुण समच्चेतो हारी सकलमुपहारी नवमुदाम दयालु श्री स्वामी नयन पदगामी भवतु मे कायेन वाचा मनुषेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए राम जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री दयालदास जी महाराज की। श्री राम गुरुदेव जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत कोट संत महात्माओं की। राम राम चक्रत दिल चित जाय मुख ते जा बन आवही नैन नैन को खाय नृप में भई दुरंत गति यहाँ रहूं नहीं को ये कैसे बदन दिखावहूं मरणो नी को हो कह जइये पइये दशा रजनी अर्ध चलो नृपराई आरण सघन नीर सरसाई बहुत तपोधन तपस्या करे वृंद अनेक कथा विस्तर है सबते भयो निरंतर एका मृगछाला दंड कमंडल भेका आसन सधर शिला पर धरियो सूर सधीर मनोरथ करियो रानी कहो इसो हुई जाऊं गुण अतीत सिद्ध दर्शाऊं ದೇವಕುಮಾರ ರೂಪ ದರ್ಶಾಯೋ ಚೂಡಾಲಾಚ್ಯುತ ಭೇದನ ಪಾಯೋ ಅಪನೋ ಭಾಗ ಸರಾಯೋ ಮನ ಮೇ ಹರಿದರ್ಶನ ದೀನೋ ಧಿನ ವನ ಮೇ ಹಾತ ಜೋರ ಕರ ವಂದನ ಬಹು ಕರೆ ಹಾತ ಜೋರ ವಂದನ ಬಹು ಕರೆ ಹೇ ಪ್ರಭು ಕಾಜ ಮಾರೋ ಸರಹೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಯಕ ಪರಮಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಏವಂ ಪರಮ ಆರಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ ಗುರುದೇವ್ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಸಾದರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಂತ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಸಾದರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧ ಸಮಸ್ತ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಕ ಯಥಾ ಯೋಗ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿವಾದನ ಕರ್ಣೆ ಕೆ ಬಾದ ಅಪ್ನೆ ಸಮಯ ಕೆ ಸದುಪಯೋಗ ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಸತ್ಪುರುಷೋ ಕಿ ವಾಣಿ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಕುಛ್ ವೇಹಿ ಶಬ್ದ ಜೋ ಸತ್ಪುರುಷೋ ಸೆ ಸುನ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲೆ ಹೇ ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾದ ಹೇ ಉನ್ನೆ ಬತಾನೆ ಕಿ ಚೇಷ್ಟಾ ಕಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಪ್ ಔರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಅಹಿತ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕಿ ನಿರಂತರ ವರ್ಷಾತ್ ಕರ್ತೇ ರಹೇ ಔರ್ ಹಮೇ ಆಪ್ಲಾಯಿತ ಕರ ಅನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಕರೆ ಯಹಿ ಉನ್ಸೆ ಸಾದರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ ಗುರು ಪ್ರಕರಣ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಅಪ್ನೆ ಚಲ ರಹಾ ಥಾ ಗಯೇ ದಿನ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಶುಕಧ್ವಜ ರಾಜಾ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಚಾಲು ಹುವಾ ಥಾ ಶುಕಧ್ವಜ ರಾಜಾ ಕಿ ರಾಣಿ ಚೂಡಾವಾಲಾ ಚೂಡಾಲಾ ರಾಣಿ ಜಿಸೆ ಕಹ ರಹೇ ಚಂಡಾಲಾ ಭಿ ಜಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಅಲಗ ಅಲಗ ಜೊ ನಾಮ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಬಡಿ ಗುರುಮುಖಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಯಣ ಥೀ ರಾಜಾ ಕೆ ಪಾಸ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹುಯೆ ಉಸ್ನೆ ಕಭಿ ಉಸ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಕಿ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಕಹಿ ಪರಂತು ಜಬ್ ಏಕ್ ದಿನ ರಾಜಾ ನೆ ಉಸ್ಸೆ ಕಹಾ ಕಿ ತುಮ್ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹೋ ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಚಾಹತಿ ಹೋ ತುಮಾರಿ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರಿ ಕರುಂಗಾ ಮೇ ಉಸ್ಸೆ ವಚನ ಲೇನೆ ಕೆ ಬಾದ ರಾಣಿ ನೆ ರಾಜಾ ಸೆ ಕಹಾ ರಾಜನ್ ತುಮ್ ಪಡೆ ಲಿಖೆ ಮೂರ್ಖ ಮೂರ್ಖತಾ ಕರೆ ಜಾ ರಹೇ ಹೋ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪಾಣೆ ಕೆ ಬಾದ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಈ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಕಾಮೋ ಮೇ ಲಗ್ನಾ ಹೀ ಇಸ್ಕಿ ಸಫಲತಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಕಬ್ ಲಗಾಓಗೆ ಔರ್ ಈ ಅನ್ಪಢ ಆದ್ಮಿ ಮೂರ್ಖತಾ ಕರೆ ತೋ ಬಾತ್ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆತಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಪಢಾ ಲಿಖಾ ಮೂರ್ಖತಾ ಕರ್ತಾ ತೋ ಉಸೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಜಾಯೇಗಾ ಯದಿ ತುಮ್ ಮುಜೆ ದೇಣಾ ಚಾಹತೆ ಹೋ ತುಮಾರಿ ಇಚ್ಛಾ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮೇ ತುಮೇ ದೇಣಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ತೋ ಆಪ್ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಬಣ ಕರ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾ ಸಾಧನ ಕರ್ಕೆ ಬತಾವ್ ಮೇ ಕೇವಲ ಈ ಚಾಹತಿ ಹೂಂ ಮುಜೆ ಔರ್ ಕುಛ್ ನಹೀ ಸಜ್ಜನೋ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಸಂಬಂಧ ಹೋತೆ ನಾ ಚಾಹೆ ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಕಾ ಸಂಬಂಧ ಹೋ ಮಾ ಬೇಟೆ ಕಾ ಸಂಬಂಧ ಹೋ ಬೇಟಾ ಬೇಟಿ ಕಾ ಸಂಬಂಧ ಹೋ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಕಾ ಸಂಬಂಧ ಹೋ ಜೊ ಕೋಯಿ ಭೀ ಸಂಬಂಧ ಹೈ ವೋ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲೀ ಹುವಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ನ ಕಿ ಕೇವಲ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಭೋಗ ವಾಸನಾ ಕಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೆ ಲೀ ಜೊ ದೂಸರೆ ಮೇ ಕಮಿ ಹೈ ಉಸ್ ಕಮಿ ಕೋ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ ಉನ್ನೆ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಲಗಾವೆ ಕೇವಲ ಇಸಿಲಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೋತೆ ಹೈ ತೋ ಯಾ ಪತ್ನಿ ಕಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಯದಿ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ನಹೀ ಲಗಿ ಹೈ ತೋ ಉಸೆ ಲಗಾವೆ ಔರ್ ಪತಿ ಯದಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ನಹೀ ಲಗಾ ತೋ ಪತ್ನಿ ಕಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಉಸೆ ಲಗಾಯೆ ಐಸೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಅಗರ್ ಕುಛ ವಿರೋಧ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ವೋ ಕೋಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ದೋಷ ನಹೀ ಲಗತಾ ಉಸ್ಮೇ ಯಹೀ ಬಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಯಾ ಬತಾಯ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭೀ ಅಗರ್ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣ ಹೈ ತೋ ಪತಿ ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರೆ ಯೇ ಉಸ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಹೈ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೇರಣಾ ದಿ ರಾಜಾ ಕೋ ಬಾತ್ ಚುಪ ಗಯಿ ಏಕ್ ಔರತ್ ನೆ ಮೇ ಇತನಾ ಬಲವಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಇತನಾ ಸಮಝದಾರ್ ಹೂ ಲೇಕಿನ್ ಆಜ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಜೆ ನಿರುತ್ತರ ಕರ್ ದಿಯಾ ಮೇ ಕುಛ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಬೋಲ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ ಅಬ್ ಮೇ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಉಸಿ ದಿನ ಬಾತ್ ಕರುಂಗಾ ಜಿಸ್ ದಿನ ಜೇಸಿ ಯೇ ಕಹ ರಹೀ ಹೈ ವೈಸಾ ಬನ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಖಾಂಗಾ ನಹೀ ತೋ ಮೇ ಮರ್ ಜಾಂಗಾ ಲೇಕಿನ್ ಮುಂಹ ನಹೀ ದಿಖಾಂಗಾ ಇಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಮುಂಹ ದಿಖಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಕೆ ಜೈಸೆ ಮೇ ನಹೀ ಹೂ ತೋ ಮೇ ಕೌನ್ ಸಾ ಮುಂಹ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಜಾಊ ಐಸೀ ಬಾತ್ ಹೃದಯ ಮೇ ಚುಭಿ ಚುಬಡೆ ಕೆ ಲೀ ಉಸ್ನೆ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಥೀ ಕಿ ಕೈಸೆ ಉನ್ಕೆ ಚುಭೆ ಬಿನಾ ತೋ ಕಾಮ ಬಢೇಗಾ ನಹೀ ಇಸ್ಲೀಯೇ ಆಧಿ ರಾತ್ ಕೋ ಚುಪಕೆ ಸೆ ವೋ ರಾಜಮಹಲ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಗಯಾ ರಾಜಾ ನಿಕಲ್ ಗಯಾ ಬನ್ ಮೇ ಬನ್ ಮೇ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲೀ ಚಲ ಪಡಾ ರಜನಿ ಅರ್ಧ ಚಲೇ ಉದರ ಪೇ ಘೋರ ಬನ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಾಥಿ ನಹೀ ಕೋಯಿ ಸವಾರಿ ನಹೀ ಕೋಯಿ ಜೂತೆ ನಹೀ ಪೈದಲ್ ಔರ್ ಉಬ್ರಾಣೆ ವಹಾಂ ಸೆ ಬನ್ ಮೇ ನಿಕಲ್ ಪಡಾ जिसको तपस्या करनी होती है वो सुख सुविधा का साथ थोड़े ही देखता है। हम तो थोड़ी दूर के लिए द्वार जाते हैं तो अपना प्रबंध देखते हैं कि वहां क्या करेंगे, वहां क्या प्रबंध है वो अधिक। तपस्या करने वाले को तो अपना भगवान के भरोसे सारा काम चलाना पड़ता है। तो निकल पड़ा, चलते 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 गहरे जंगल में पहुंच गया जहां पर पानी के कई झरने चल रहे थे। पहाड़ी मार्ग था, हरा भरा चारों तरफ पेड़ों से छाया हुआ अच्छा दे तो वन है। ऐसे वन में जहां अनेक ऋषि मुनि कुटिया बना करके तपस्या करते हैं और चारों तरफ ऋषि मुनियों का आश्रम बने हुए हैं जहां वे अपने अपने साधन में लगे हुए हैं। उसी वन में एकांत जगह देख करके पहाड़ी के एक बड़ी शिला के ऊपर राजा ने भी अपना आसन जमा लिया। मृगछाला बिछाने के लिए हाथ में दंड और कमंडल ले लिया, कमर में जो कमदोरा है मूंज का कंदोरी बांध ली, तपस्वी का मुनि का वेश धारण कर लिया। मुनि का वेश, महात्माओं के वेश में जाकर के मुनि का वेश धारण कर लिया। रानी ने कोई खोज नहीं की कहां गए कहीं नहीं की, क्योंकि गए साधन करने के लिए है। अब जो गए करने के लिए है तो उनको बीच में क्यों विघ्न किया जाए। यहां आएंगे तो फिर वही संसार के विषयों की बातें तो याद आएगी और वहां जाएंगे तो रहकर भजन करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, ही अच्छे सुधार का मार्ग पकड़ेंगे। नहीं, वापस बुलाने की कोई चेष्टा नहीं की, किसी से कुछ भी नहीं कहा। रानी अपने घर पर, राजा अपने मार्ग पर, दोनों अलग अलग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। मृगछाला पहन ली, दंड कमंडल धारण कर लिया, एक आसन पर शिला पर आसन जमा लिया, बड़ी सूरवीरता के साथ में अपना साधन करने का पक्का मनोरथ बना लिया। ये निश्चय है कि जैसा राणा ने कहा है वैसा ही मैं बनकर के बताऊंगा, गुणातीत साक्षात सिद्ध महापुरुष में बनकर के ही रानी के पास जाऊंगा। इस प्रकार कुछ दिन राजा वहां वन में उस पहाड़ी प्रदेश में शिला पर बैठा तपस्या करता रहा। उसी समय की बात है, चूड़ाला जो रानी, इसकी रानी ने कुछ एक योजना बना करके इसकी परीक्षा करनी चाहिए। वहां क्या करता है, वहां जाकर के कहीं खावे पीवे धाप के सोवे मन के भाई, सो पशुआ सांगी अवश्य जग को धर्म बढ़ाए, ये तो नहीं बन के बन फूल खा ले और फल फूल खा लिए, कंदमूल फल खा लिए और लेट गए, बैठ गए तपस्या में, कोई आवे जब तो तपस्या करने लगे, माला फेरने लगे और जावे तो लेट जावे आराम करके, ऐसा तो नहीं है, जाके देखना चाहिए उसको। इस प्रकार विद्यार्थी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अध्यापक देखता रहेगा तब तो उनकी पढ़ाई होगी, और वो उनको नहीं देखेगा तो पढ़ाई करेंगे नहीं, विद्यार्थी तो खेलकूद में अपना समय बर्बाद कर देंगे। उसने कोई ऐसी योजना बनाई, देव कुमार का रूप बनाया, जैसे देवताओं का रूप होता है उसी प्रकार देवता का स्वरूप बनाया उसने, देव कुमार। देवताओं के आकार में वो रानी बदल करके और वहां पहुंच गई जहां पर वो वन में तपस्या कर रहा था राजा। आकाश मार्ग से नीचे देव कुमार आ रहा है, प्रकाश फैल रहा है, उसे देख करके अब ये राजा ने समझा कि मेरी तपस्या थोड़े दिन में ही पूरी हो गई, देख लो भगवान आ गए, भगवान दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, कितने आनंद की बात, कैसी मेरी तपस्या, ओहो भगवान भी हाथों हाथ मेरे पर प्रसन्न हो गए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगी, ठीक है अब मैं वापस रानी के पास जाके बताऊंगा, देखो मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। पहले घमंड करने लगा, वहां पर आए नहीं उससे पहले, अपने भाग की सराहना करने लगा, हरित भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया वन में। अब जो ही देव कुमार वो नीचे आए, हाथ जोड़ करके राजा ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान आज आपने कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया है, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद है। देव कुमार ने आकर के राजा से पूछा, कई कारण ई वन में राजा पूर्ण मनोरथ यतन साजा। राजा से पूछा उस देव कुमार ने, हे राजन तुम इस वन में ऐसी तपस्या करने के लिए क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो, क्या मनोरथ है तुम्हारा, और जिससे कि तुमने तपस्वी का वेश बनाया है, राजा ने जवाब दिया, हे प्रभु त्याग कियो में सारो, राजसाज भोगाधिक खारो, पर व्रत छाड़ भयो निर्वरती, निष्प्रय हो या तुम्हें आसकती। हे प्रभु, राजा ने जवाब दिया, मैंने सारे संसार का त्याग कर दिया है, संसार का राज्य, संसार के राजभोग, संसार के वैभव, ये सब के सब बेकार है महाराज, क्या बताऊं। इसलिए मैंने प्रवृत्ति का मार्ग छोड़ दिया और निवृत्ति का त्याग का मार्ग अपना लिया है। संसार से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं किसी से। संसार की आसक्ति त्याग करके मैं तो केवल आपके चरणों में अपनी आसक्ति जोड़ चुका हूं, आपका बन चुका हूं महाराज, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने संसार का सब त्याग कर दिया। जब ये बात सुनी देव कुमार ने कहा, कहा त्याग तम कीनो राजा, उही मंथन बचन समाजा, सुन इतिहास कहो एक तो हुई, तुम ते वृद्ध हो तो नृप सोई, राजसाज बदल बल सुखधामा, देश पड़ग नागढ़ मड़ नामा, मातंग बहुत वृंद वृंदायक, गज इक भूप अश्वारे लायक, तन कुंजर पण समझे सारा, वचन प्रमाण अज्ञा मतवार हो। देव कुमार ने कहा, अरे राजन तूने किस चीज का त्याग किया बुझारा, मुझे बताओ तो सही। तेने कहा, मैंने त्याग कर दिया, क्या चीज त्यागी है, मुझे तो दिखाई दे रहा है तू, वही तो तेरा मन है, वही तेरा शरीर है, वही तेरे वचन है, वही तेरी संपूर्ण भावना है। जिन भावना को और वचन और शरीर को लेकर घर से रवाना हुआ, अभी भी वो कब वो है तेरे पास, तब तेरे त्याग क्या किया है अभी तक। देख मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाऊं, ध्यान दे के सुना। राजा सुनने लगा, बताइए महाराज। मैं कहा दृष्टांत सुना रहा हूं, तुम्हारे जैसा एक बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक बड़ा बलवान सूरवीर राजा था, एक खूब राजशाही ठाटवाड़ था, उसके पास में सुख संपत्ति की सामग्री थी, कई देशों का स्वामी था, उसके कई बड़े किले थे और जगह जगह उसकी प्रशंसा जय जयकार हुआ करती थी। उसके यहाँ कई हाथियों का झुंड सदा सेवा में रहा करता था। उन हाथियों में एक सुंदर हाथी, बहुत विशेष प्रकार का हाथी, वो राजा के लायक, सवारी के लायक स्पेशली था। बहुत हाथी समझदार था, शरीर तो भले उसका हाथी का है, परंतु वो बड़ा समझदार था, इशारे से बात समझ जाता था। जो कुछ भी बात लोग बात करते वो बात पहले पहचान जाता था। बड़ा मदद मस्त मस्ती में घूमता, खाने पीने की कोई कमी नहीं, और इस प्रकार वो अपने मन वंचित भोजन करवावे, नरपत दर्श पर सुख पावे। जो चीज उसको खाने के लिए चाहिए वो हर समय उसके पास में हाजिर रहा करती थी। राजा को देख करके वो बड़ा सुख होता और राजा भी उस हाथी को देखता तो बड़ी प्रसन्नता होती। जब राजा को देखता है तो उस समय ऊट बैठ चरतो रह जावे, पील कान वान के सो गज गावे। उठता बैठता चरता जो कुछ भी है वो चुपचाप खड़ा हो जाए राजा को देखते ही। पीलवान जो उसका महावत है, वो महावत जैसा संकेत करे उस प्रकार हाथी बोलता था, काम भी करता था। ऐसा वो हाथी बड़ा समझदार है। उस राजा का वो हाथी, उस हाथी की कहानी बता रहे। एक दिन की बात है, उस हाथी के मन में आई, मैं यह बंधन में पड़ा जेल खाना भोग रहा हूं, दूसरों के पराधीन पड़ा हूं, मैं इतना बलवान हूं, क्यों नहीं इस राजमहल को तोड़ छोड़ करके, सांकड़े तोड़ करके, दरवाजे तोड़ करके और जाऊं तो मैं अपने कुटुंब में जाकर के वापस क्यों नहीं मिल जाऊं। ऐसा मन में विचार किया और लगाया झटका, सांकड़ उखाड़ ली, खूंटा बंधा था नहीं, खूंटे के सहित सांकल उखाड़ ली, दरवाजे के दी माथे की एक चोट, दरवाजा चुकना चूर हो गया और वहां से वो हाथी जंगल में भाग गया, जहां से उसे लाया गया था, उसी जंगल में भागा 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 हाथी चला गया। महाबलवंत जोर करवायो, सांकल खूंटा लिया ध्यायो, सांकल और खूंटा लेकर के वहां से भगा है। अब वहां हाथी के महावत में जाकर के राजा से पुकार की, महाराज महाराज आपका प्यारा हाथी तो भाग गया, अरे क्या कह रहे हो? हाँ सच्ची बात महाराज, वो बस में नहीं आया, हमको तो उसने दाव नहीं दिया है। राजा को क्रोध आ गया, नालायक इतना आराम से यहाँ पर उसे रखा, आज वो मेरा साथ छोड़ करके भाग गया, उसको तो पकड़ा करके मराएंगे बेचारे नालायक को, अपने की पहचान नहीं करता है। एकदम क्रोध भरा, अपने सैनिकों से कहा, देखो चरखी भाला जो जो कुछ भी शस्त्र अस्त्र चाहिए वो लेकर के जाओ, और उस हाथी को मार मार करके पीट पीट करके उसको सीधा करके मेरे सामने हाजिर करो। ऐसा कर दो कि फिर कभी वो ताकत नहीं लगा सके, जोर नहीं लगा सके, और जब तक जिए तब तक वो अपनी मार को भूले नहीं। 100 सुनार की एक लवार की ऐसी पिटाई दो एक बारी जो सदा सदा के लिए याद कर ले। जब बात सुनी, सैकड़ों और हजारों की संख्या में नौकर चाकर जो सैनिक लोग थे, वे राजा की अपा करके हाथी को पकड़ने के लिए वन में गए। वन को पहुंचा, भेद रचाया। अब वन में जाकर के हाथियों को ढूंढने लगे, हाथी बहुत है वहां, हाथियों का वन है, बहुत से हाथी वन में घूम रहे हैं। अब लेकिन वो हमारा हाथी है कौन सा, किसको पकड़े? किसी ने कहा वो तो उसके पैर में संकड़ खूंटा बंधे हुए हैं, वो हाथी है अपना, तो ये तो दूसरे अपने, इनको नहीं छेड़ना, उसी को पकड़ना है। अब उसे पता लगाते लगाते लेकर चारों तरफ कई चक्कर लगाए, इधर आवे उधर आवे, जाते जाते एक जगह हाथी के घूमने में आवाज आई सांकड़ के, खन खन खन, ओहो ये इन हाथियों में वो हाथी है, अपना हाथी जिसे हमें पकड़ना है। तो पेखे संकल खूंटा लारे, गज पद द्वाब दूर पर हारे। अब उन्होंने सोचा कि उस हाथी को पकड़े तो कैसे पकड़े, वापस पास में जाएंगे तो वो तो मार देगा, पकड़ में आएगा नहीं। कोई जुक्ति को काम में ले, जुक्ति के द्वारा ही वो पकड़ में आएगा, ताकत से तो वो पकड़ में आने वाला है नहीं। जहां हम जाएंगे वो आगे आगे भाग जाएगा, अरे हम सवारी लेकर जाएंगे तो हमारी सवारी को कुचल डालेगा वो तो। उन्होंने एक योजना बनाई, एक जगह जमीन में खड्डा खोद करके, बहुत लंबा चौड़ा खड्डा खोद करके, उस खड्डे में एक तरफ से अंदर जाने का रास्ता रखा, बाकी तरफ से दीवार उस खड्डे की बना दी। ऐसे उस खड्डे को तैयार किया है, और आप दूर खड़े हो गए, तन पर हार निर्बलता निर्बलता कीनो, एक कोंट में सेंटो दीनो। दूर से पेड़ पर छुप करके वे बैठे बैठे देख रहे थे, वे देखते गए देखते गए। अब उन्होंने मौका देखा कि अब वो हाथी आ रहा है, धीरे 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 एक हथनी को उस खड्डे में जो कपड़े की बना करके खड़ा कर दिया, वो हाथी दौड़ करके उस हथनी के पास में खड्डे में चला गया। पीछे से इन लोगों ने जाकर के बाहर से भी उस रास्ते को जिधर से वो अंदर गया था वहां भी खड्डा खोद करके उसको बंद कर दिया, अब बाहर निकल नहीं सकता है। अब खड्डे में उसको बंद कर दिया, अब वो इधर उधर माथा पच्ची कर रहा है, भीड़ टूटती नहीं, चारों तरफ घूम रहा है, खाने पीने के लिए देते नहीं है, भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है, और माथे के चोटे लगा लगा करके माथा कमजोर कर रहा है, लेकिन नहीं निकलने दिया, नहीं निकलने दिया। दरवाजे पर चारों तरफ भाले लिए खड़े, टीके टीके, किधर जाएगा, जाने नहीं देंगे इसको। इस प्रकार एक कोट में सेंठो की नो, खान पान बिना अति बिलरा भाई, अब पानी पिए बिना और चारा खाए बिना हाथी रोने लगा और शरीर कमजोर पड़ गया। अब ज्यादा कमजोरी आ गई और उसमें ओट ओट के नीचे गिरने लगा भूख के मारे, अब तो मरने ही वाला है, बस ऐसी दशा उसकी देखी। तब उस हाथी को उन लोगों ने पकड़ लिया, पैरों को बांध लिया और बांध करके उसे आग अपने राज में राजा के पास में लेकर के आए। मर तक जान चार जल दी ना, उसको पानी और चारा खिलाया कि मर जाएगा कहीं, इसलिए अब उस हाथी को फिर ऐसा बस में किया, जीवन पर्यंत फिर कभी हाथी ने नाम नहीं लिया कि मैं कभी जंगल में जाऊंगा, ये उसकी दशा हुई। उसका जो आज तक आदर था, सारा आदर उसका खत्म हो गया, दूसरे हाथियों के समान, सामान्य पशु के समान उसकी दशा हो गई। ये सब क्यों हुआ? सांकल टूटी नहीं दुख बसवा, ये हुआ एक पैरों में सांकल थी, इस कारण से वो पकड़ में आ गया, पहचान में आ गया। यदि पैरों में हाथ सांकल नहीं होती, वो टूट गई होती, तो क्यों आती वो वापस दुख में पड़ता? बदसु सांकल होती जो दूर है, वो कुंजर काहे को जुरे, आज उसकी दुर्दशा क्यों होती? पर आज वो हाथी की कहानी बता देकर क्या कहना चाहते हो? देव कुमार ने कहा, सो गज तू नृपराज, वो हाथी दूसरा कोई नहीं है, तू ये वो हाथी है राजा, तू वही हाथी है। तो महाराज मैं कहा हाथी, मैं तो मनुष्य हूँ। अरे तू मनुष्य तो है, शरीर से दिखने में आकार में है, लेकिन पशु से भी गया बेटा, हाथी के समान मदोन्मत है। काम क्रोध मोह और लोभ की तेरे पैरों में सांकल आज भी बंधी हुई है। कामना है कि नहीं? क्रोध भी है कि नहीं? लोभ है कि नहीं? मोह भी है कि नहीं? बता। ऐसी प्रबल मजबूत सांकल है, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार मजबूत खूंटे हैं। तो ये खूंटे तेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इनको लिए ले यदि तू कुछ भी साधन करेगा, तेरा कोई साधन सफल नहीं हो पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो नौका को खूंटे से खोलो और मुक्त चलने दो, तभी नौका आगे बढ़ पाएगी। सो गज तुंद्र पराज, काम क्रोध मोह लोभ की सांकल प्रबल समाज, मन बुद्ध चित्त खूंटा रहूं। बस इतनी बात कही और कह करके देव कुमार तो आकाश की तरफ उड़ चले, आगे जाने लगे। राजा के मन में बड़ी खलबली मच गई, ओहो मैंने तो देखा मेरा काम बन गया, लेकिन अभी तो श्री गणेश ही नहीं है। श्री गणेश हुआ ही नहीं, काम बना कहाँ है? जैसा इस महापुरुष ने बताया, मैं तो अभी इधर लगा ही नहीं हूं। अब जाते जाते देव कुमार से हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे आप एक अकेला छोड़ के जा रहे हो, या मेरा कौन है बताइए साहब? मैं अनाथ हूं और दुख ने मुझे चारों तरफ से पकड़ लिया है। मैंने अब तक सोचा था कि मैंने त्यागी बन गया, परंतु अब आपके वचनों से समझ में आया कि मैं शोक के समुद्र में गिर पड़ा हूं। महाराज देव कुमार ने जवाब दिया, राजन क्या त्यागी हो जाने सारी, तेने क्या छोड़ा है तुझे पता है? खान पान मन भोग भिखारी, आज भी खान पान और भोग का तो भिखारी बनाए बोली चार है मंद्र भाई ने, तब त्याग किया तेने त्याग किया? तू सोच रहा है कि मैंने गादी गदरे का त्याग कर दिया, सिंहासन का त्याग कर दिया, सिंहासन छोड़ करके आया हूं, मैंने त्याग किया है? अरे वहां गदरा रंजक सिंहासन, वहां तो रजई पत्थरे और गदरे थे, पलंग थे, और यहां पर इस सिल्लाड़ी के ऊपर आसन लगा लिया। आसन तो जगह तो वो की वो है नहीं, वो अब लकड़ी थी, यहां ये पत्थर हो गया, पत्थर वे ऊपर बैठ गया करके। सहज ठोर मृग छाला डारी, वहां पर जो तुम्हारे मखमल की गद्दी बिछी थी, उस जगह यहां पर मृग छाला तेने बिछा ली, और वहां पर सोने की जारी थी तेरे पानी पीने के लिए, यहां पर हाथ में कमंडल ले लिया पानी पीने के लिए। बात तो वो की वो है ना, शस्त्र तज हाथ में तलवार बंदूक छोड़ करके यहां पर तेने डंडा उठा लिया, अब बताओ फर्क क्या पड़ा? बलकल ढाकण तन पर चंडा, वहां पर रेशमीन कपड़े थे, यहां पर बलकल कपड़े पहन बलकल वस्त्र धारण कर लिए। वन अज्ञान नगन तो वाई प्रभुता हूं वन बैठो वाई, वहां पर अज्ञान रूपी वन में नगन होकर के बैठा था, और यहां पर मैं बड़ा हूं मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं, ऐसे इस अहंकार रूपी बड़े जंगल में नगन होकर बैठा है। तो त्याग किया क्या अगर तेरे सोचो सही? राजा ने जवाब दिया, महाराज अंतर्यामी आप कहो अज्ञासो ही करूं, मेटो ये संताप विघ्न विदारण राम जी। आप अंतर्यामी महाराज, आप मुझे आज्ञा दोगे वैसा करूंगा मैं, मेरा संताप मिटाइए, विघ्न मिटाने वाले साक्षात राम रूप आप हो, आपके चरणों में मेरा बार बार वंदन है। देव कुमार को जिस इसने वंदन करके ये बात निवेदन की, तब देव कुमार ने जवाब दिया, दिन कभी सदर्श दू तो ही, आठ जाम मद चेतन जोई, मैं हूं देव कुमार स्वरूप दियो भावना दर्श अनुपा। राजन तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, ऐसा करना 21 दिनों में तुम्हें यदि मैं आठों पौर में जागृत देखूंगा, मैं किसी भी टाइम वापस आ सकता हूं। 21 दिनों में आठ ही पौर, मतलब दिन में भी आ सकता हूं, सुबह भी आ सकता हूं, शाम को भी आ जाऊं, रात में भी आ जाऊं, कब आ जाऊं पता नहीं। यदि मेरे आते समय तुम जागृत मिले तो मैं तुम्हें कोई न कोई रास्ता बताऊंगा। लो पेशी पटक दी 21 दिनों की। अब कहीं आवे उससे नींद ले ला, नींद ले ले तो करे करे सारा फैल। मैं हूं इस प्रकार तुम्हारी इस भावना को फलीभूत करने के लिए ही मेरा तुम्हारा मिलना हुआ है। इस प्रकार सावधान रहना, दिल में जागत रहिए बंदे, दिल में जागत रहिए बंदे। हे प्रीत हरिजन सु करिए पर हरिए दुख दंदा, दिल में जागत रहिए बंदा, रात दिन जागते रहना। गर्ज है तो भाई जागना पड़ेगा, क्या करे। लक्ष्मण जी 14 साल तक जागते रहे, कभी नींद नहीं ली 14 वर्ष तक। यहां तो 21 दिन का मामला है, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं। 21 दिन कह दिया कि 21 दिन में यदि मैं जागते देखूंगा, किसी भी टाइम आ जाऊंगा। परीक्षक है, अचानक निरीक्षण करने के लिए कोई मिनिस्टर पहुंच जाते हैं, कभी स्कूल का, कभी कार्यालय कोई का, पोल खुल जाती वहां की सब। इच्छाधार भगत के आऊं, दर्श देऊं, देख जो पाऊं। इस प्रकार जब बातें बता दी और वहां से वो आकाश में जाके अदृश्य हो गए। राजा तो अब एक टक दीजिए लगा करके आकाश को देखने लगा। 24 घंटों में एक ही प्रकार की वृत्ति बना ली। भय अलोपत इति वाणी सुखद ध्वज मन में साची मानी, उर्द भयो जोवत चित एक रूप बिलोकत वाच्य भी देखे। कौन पान की शुद्ध नहीं कोई, अब तो राजा को भूख है न कोई प्यास है। रात दिन आकाश की तरफ उन्हीं को बार बार याद करे, रात दिन अखंड जागृत रहते हुए उसी की छवि को याद करते करते राजा का समय बीत रहा है। 21 दिन पूरे हुए और वचन के अनुसार देव कुमार फिर उस राजा के पास में पहुंचे। राजा को बड़ा आनंद आया, परंतु अब देखो इतने दिन भई चेष्टा मंथन दूजी, अब की आकर के देव कुमार ने देखा 24 घंटे जैसे तलवार माथे पर लटकती रहती है, तो ये समय की अवधि लटक रही थी। तो 24 घंटे संसार की बातें याद कभी आई नहीं उसको, और केवल एक ही एक याद आया, एक ही एक शिव कुमार का चिंतन रहा, तो शरीर की चेष्टा और की ओर दिखने लगी, बदल गई, भावना भी और की ओर होने लगी। आते पहले समय जो बातें कर रहा था आज वो बातें नहीं कर रहा राजा। ब्रे वियोग दर्श की सूझी, उनके दर्शन के विषय में विरह का वियोग दिल में छाया हुआ दिखने लगा। अब सादर गिरा ज्ञान गुणवंता, केवल चर्चा एक भगवंता, केवल भगवान की ही चर्चा कर रहा है। संसार के भोगों वासना की कोई बात उसके दिल में दिखाई नहीं, आंखें उसकी पवित्र हो गई। उनके दर्शन करने से हृदय में प्रेम जागृत हुआ, प्रेम से मिलना हुआ। अब जैसे शिष्य और गुरु जो आपस में मिलते हैं और सहज भाव से निष्कपट भाव से मिलकर के और अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं, इसी प्रकार वो शिष्य रूप से बना हुआ राजा देव कुमार के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा है, महाराज मुझे किस चीज का त्याग करना चाहिए कृपा करके बताइए, कहा करूं त्यागों का स्वामी, और मुझे करना क्या चाहिए, मेरा कर्तव्य मुझे बताइए। मैं घर छोड़ के आ तो गया लेकिन रास्ता मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। जब रास्ते नहीं दिखाई दे रहा तो मैं किस रास्ते पर चलूं, कहां जाऊं। आप अंतर्यामी हो भगवान, आप कृपा करके मुझे अपना रास्ता बताइए। देव कुमार ने जवाब दिया, कीजे चित्त त्याग राम राम मुख उच्चरो, भूर नृपद बड़ भाग सदगुरु आज्ञा सिर धरो। एक तो अपने चित्त में संसार के जो विकार है उनका त्याग कर दो, मतलब संकल्प विकल्प का त्याग कर दो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये घर है, ये बाहर है, ये चित्त में जो संकल्प विकल्प पैदा होते हैं ना, ये तरह तरह के हिलोरे आते हैं, लहरें आती है, इनका त्याग कर दो। और करने के लिए भगवान का राम नाम का जप करो, राम नाम का उच्चारण करो जीभ से, बस राजन तुम भाग्यशाली हो, गुरु महाराज की आज्ञा में जैसा मैं बता रहा हूँ इन वचनों में विश्वास रख करके ऐसा काम करोगे तो तुम्हें जीवन में शांति की प्राप्ति और अनुभूति हो जाएगी। कीनो वचन प्रवाण चित लागो सदगुरु दर्श राम राम मुखवाण आन दशा विश्रत भये। अब जैसा वचन कहा उसी वचन को उसने सत्य किया, मन में ऐसी एक वृत्ति लग गई कि कब गुरु महाराज कृपा करके मुझे दर्शन देंगे। अब मुख से केवल जैसा था देव कुमार ने कहा उसी प्रकार राम नाम का उच्चारण करने लग गया और सारी बातें अंतःकरण से भूल गया, बस राम नाम का निरंतर जप कर रहा है। रसनासु रटबो करे आठू पौर अभंग रामदास उन संत का रामन छाड़े संग। जो अपने जीव से आठवें पौर भगवान का राम नाम का उच्चारण करता है वो राम जी उसका साथ नहीं छोड़ते, कभी सदा उसके साथ बने रहते हैं। अब मुख से राम नाम जप करना चालू कर दिया तो भगवान तो उसके अत्यंत निकट आ गए, अब दूरी सारी दूर हो गई। उपज भावना दर्शन देवे मन वज क्रम से गुरुपद सेवे चर्चा राम आत्मा निर्मल शिवरत सास दहो दिश परमल परचय आत्म भया जोगेश्वर श्रुत शब्द गर्भ पाये मनेश्वर मन बुद्ध आत्म मेल मिलाया परमात्म पर सहजा पाया सुरपति आय वंदना कर ही वीर का पुष्प भाव अनुसर ही। अब गुरु महाराज की दर्शन करने की निष्ठा जागृत हो रही है, गुरु महाराज के दर्शन मुझे कब मिले कब मिले कब मिले, और जैसा ही कह रहे इसी रास्ते से मिलेंगे। सबरी जैसे राम जी का मार्गदर्शन करती है कि गुरु जी ने कह दिया कि इसी वन में तुम रहना, राम जी के दर्शन हो जाएंगे, राम जी के दर्शन हो जाएंगे इसी वन में तुम तपस्या करते तो सबरी जोरी बाट राम कब मेरे घर आओगे। ऐसे वो आएंगे इसी रास्ते से मिलेंगे पक्का भरोसा है और उसी प्रकार सुमरण में लग गया। आत्मा में शुद्ध शब्द का योग गतिशील बन गया, मन बुद्धि और आत्मा मिलकर के एक हो गए और परमात्म के साथ में उनका जो सहज संबंध है वो उसे प्रतीत होने लगा। उसी समय इंद्र देवता आए, पुष्पों की वर्षा करने लगे और पुष्पों की वर्षा करके परिकर सुरपत लेवन आयो दर्शन कर्ण मनोरथ चायो लीजे विभय स्वर्ग को सारो भूपत के लगे मोहि कारो। इंद्र देवता ने आकर के कहा महाराज महाराज मेरी विनती सुनी आप सत्पुरुषों को, मैं अपना स्वर्ग का जो राज्य भेंट करना चाहता हूँ आप कृपा करके उसे अपना लीजिए। लीजिए विभव स्वर्ग को सारो जो मेरा राज्य में आपको देना चाहता हूँ ले लीजिए। राजा ने कहा मुझे तो बिल्कुल वो कड़वे नीम के समान लग रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, अगर उसमें अच्छा पुण होता तो तुम छोड़ते क्यों? भोग भोगाव जो संसार के भोग हैं वो मुझे कैसे लगते हैं, जैसे मुंह से थुकावा थूक होता नहीं कहता थूकन चाटे के जो पी के समान लग रहा है। गुरु महाराज की कृपा से मुझे अंदर ही अंदर आनंद आ रहा है, चौदह लोक में जितनी भी राजधानी राजधानी है वे सब के सब मुझे जहर के समान लग रही है, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, केवल राम जी का प्रताप राम जी का नाम मुझे अच्छा लग रहा है, वही मुझे याद आ रहा है। मैं क्या करूंगा तुम्हारा लेकर के जाओ, तुम्हारा तुम्हारी मुबारक। देवराज उन्हें प्रणाम करके चला गया। राजा के हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, तीन काल की भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें उसको दिखाई देने लगी। उसे पता लगा ए चरित कीनो घर नारी, अब उस सब तरह का ज्ञान आ गया तो उसको पता लगा ये तो सारा चरित मेरे रानी का किया हुआ है, उसी का ये सारा काम है। ओहो, और गुरु प्रसाद भक्त विस्तारी वास्तव में वो गुरुमुखी है, इसलिए गुरुमुखी होने के नाते उसने अपनी भक्ति का प्रसार किया और मैं जो संसार में भटक रहा था मुझे भी कड़वे वचन बोल करके संसार से निकाल लिया और भक्ति में लगा दिया। धन्य भाग है ऐसे बलियारी है जो भक्ति में लगी हुई रानी का मुझे दर्शन मिल जाए तो मेरा अपना जीवन सफल हो जाता है। ओहो, ऐसे वो तो साक्षात मेरे लिए गुरु का काम करने वाली है, गुरु से जो ज्ञान मिलना चाहिए शिष्य को वही ज्ञान मुझे अपनी रानी से मिला है, इसलिए वो मेरी रानी नहीं अभी तो आज वो मेरी जीवन बदलने वाली गुरु है। हे प्रभु मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन करा दीजिए। भगवान से विनती करता गुरुदेव के दर्शन कराइए, और गुरुदेव वही होता है जो ज्ञान देता है। ज्ञान उसी ने दिया है और गुरुदेव के रूप में याचना की तो इतने में रानी चलाई भगवत भक्त प्रताप सदाई, इतने में तो वो रानी वहां पर चली आई। आत्म परते शब्द प्रकाशा घट विच अघट राम शुक्राशा नार पुरुष को भेदन कोई गुरु शब्द प्रकट सिद्ध सोई। उनके आत्मा में परिचय हो चुका था, राजा को आत्मा की अनुभूति हो चुकी थी, शब्द की अनुभूति हो चुकी थी, इसलिए घट में ही अपने हृदय में ही अपने शरीर में ही अपार सुख और आनंद की लहरें उसे उठने लगी। स्त्री और पुरुष का उसे ज्ञान हो गया, कोई फर्क नहीं है, संसार में भेद नहीं है। शब्द का प्रकाश स्त्री के पास में भी है तो वो पुरुष से बढ़कर के, और पुरुष के पास में अगर शब्द का प्रकाश है तो वो परम वास्तविक पुरुष है। आज ये गुरु रूप में मेरे सामने प्रकट होकर के आई है। धन्य भाग रानी को राजा ने गुरु रूप मान करके वंदन किया, प्रणाम किया। राजा कहने लगा सदगुरु वायक तुम तत्वेता, हे रानी तुम गुरुमुखी हो और गुरु तत्व को पहचानने वाली हो, तुमने गुरु तत्व को पहचान करके और तुमने अपना जीवन ही सफल नहीं किया है। मैं अभिमानी जो था, मैं अचेत पड़ा था संसार के भोगों में, तैने मुझे पकड़ करके अपना कर्तव्य निभाया है, अर्थात अपने समान बना करके मुझे अपने साथ में लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी कृपा से महान भाग्यशाली हो चुका हूँ। गुरु प्रसाद प्रकट जन्माई अहू कपाट सूज मम नाई, अरे मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ में रहा परंतु मुझे अपने अहंकार के कारण से तुम ऐसी गुणवती हो, ऐसे भक्तिमती हो, ये बात मैं पहचान नहीं सका। ये मेरी कितनी भूल है, ये कितना मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान ने ही मुझे सावधान करके ये मुक्ति का मार्ग दिया है, इसलिए मैं आत्मबोध साच दर्शायो सदगुरु स्वरूप मोई समझायो। सदगुरु का स्वरूप धारण करके तुमने मेरा अपना आत्मबोध जागृत किया और जगा करके मुझे सही रास्ते पे लगाया है, इसलिए मैं महान भाग्यशाली हूँ। तुम जैसी रानी पाकर के मेरा जीवन सफल हुआ है। रानी ने बातें सुनकर के, पति की बातें सुनकर के उनको प्रणाम किया, पति रूप से प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा है गुरु प्रसाद ईशदासारी, महाराज हे पतिदेव ये मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, मेरी कोई इसमें खासियत नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये केवल गुरु महाराज की कृपा है, उनकी योग्यता है, उनकी कृपा की अनुभूति से ये सारा काम बना है। इच्छा ज्ञान प्रकट अधिकारी, उनकी इच्छा हुई कि मेरा ज्ञान तुम योग्य अधिकारी हो तब उसको प्रकट करके बताना, ये उनके वचन थे। तो इतने दिन तक आप में वो योग्यता लायक कोई स्थिति थी नहीं, पर जब आपने कहा मेरी इच्छा क्या है आपने पूछा तो मेरी इच्छा तो ये है। मेरी इच्छा इतने तक अंदर छुपी थी, मैंने कभी प्रकट नहीं की, पर आपने कह दिया तो मैंने वो प्रकट कर दी। गुरु महाराज ने आपका और मेरा एक स्वरूप करवा दिया, अर्थात एकता करवा दी है। राज काज जग भेदन पायो, अब तक राज काज में रहते हुए आपने जिस चीज को अनुभव नहीं कर सके हो उस चीज का अनुभव हो चुका है। आप स्वरूप विंत्रिया राजस देव कुमार कियो हम साजस, अपने आत्मस्वरूप को पहचाने के बिना जो रजोगुणी है स्त्री है वो वास्तव में राजसी स्त्री कहलाती है, वो भोग्य है, संसार की केवल भोगाशक्ति में तल्लीन रहने वाली हुआ करती है, लेकिन मैंने गुरु महाराज का आश्रय लिया इसलिए मैं उस संसार में रह करके भी उनसे बच करके रही हूँ। महाराज मैंने ही देव कुमार का रूप बनाया था और गुरु सरोज पद आत्म लीना निज तन राम राम मुख कीना। गुरु महाराज के शरणागति के प्रताप से आज आप और हम दोनों कृतकृत हो चुके हैं। घट भेदा दे के मिटो करता था, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता कल्याण करने में, कल्याण कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, लेकिन अंदर सच्चाई हो जिज्ञासा हो, अपना विवेक जागृत हो जाए तो ये काम बहुत आसानी से संभव हो सकता है। लेकिन सच्चा संग मिले तब ये काम बनता है। जब तक संसार का झूठा संग साथ में रहेगा तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता। झूठा संग रहेगा तब तो पता नहीं है। गृह त्याग पक दूर मिटाया, निर्वृत हुई राम गुण गाया, अयुत संसया जुग संगा, माया मोहन काल प्रसंगा। अब उसके बाद में राजा रानी दोनों ही भगवान के प्यारे भक्त बन करके संसार में वापस राज में चले आए। राज में रहे पर राज का सारा वैभव रहने पर भी उससे कोई लिपायमान नहीं हुए। कमल का फूल, कमल का पत्ता जैसे पानी में ही रहता है और पानी में रह करके भी पानी चिपकता लिपता नहीं है, इसी प्रकार वे सब घर में रह करके भी उसे निर्लेप रहे। हजारों वर्ष तक उनका साथ रहा, माया के साथ में कोई उनका संबंध नहीं रहा। दोनों के हृदय में एक ही प्रकाश था, केवल ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया था, इसलिए संसार में सभी प्रकार की मन की आशाएं जिसे इच्छा कहते हैं उर्चाय उपाय भमाय सबे घट लाए अथाय जलाय दिया मुरझाए दिखाए जमाए तबे सटताए बताए धकाए लिया। जो इच्छा है ना, ये इच्छा है,
इच्छा है खत्म कर दी।
आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुख, ये उनके जीवन में अनुभव में आ गया। संसार की कितनी भी आशा रखोगे तो दुख का ही खजाना होगा, और आशा से अलग हट जाओगे परम आनंद ही आनंद होने लगेगा। कुछ नहीं होने पर भी आनंद ही आनंद रहेगा, और आशा रहेगी तब भले कितना भी पास में वैभव हो जाओ दुख ही दुख रहेगा, मिटेगा नहीं। ज्यादा होने के बाद में ज्यादा दुख है, परंतु आशा छोड़ने के बाद में कोई दुख है ही नहीं। निराकार मिले सेवक स्वामी, जीव शिव मिले मोक्ष ग्रामी, जीव और शिव दोनों का तदाकार रूप हो गया, आखिर में वे साक्षात ब्रह्म में ही जाकर के विलीन हुए। अब तुमने कहा देखो, चुड़ैला रानी स्त्री होकर के कोई क्या और जाति क्या कर सकती है? अरे और जाति जहाँ शरीर है, जाति कुछ नहीं है। आत्मा तो स्त्री में है, पुरुष में है, दोनों में एक है। स्त्री के पास में शरीर औरत का है, पुरुष के पास में शरीर पुरुष का है, लेकिन आत्मा में दोनों में एकता है। अब देखिए, रोना होता है, रोने की आवाज सबकी एक होती है। रोने में अंग्रेज रहो चाहे गुजराती रहो चाहे मराठी रहो चाहे मारवाड़ी रहो, हंसने की आवाज एक होती है, इनमें फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनमें शब्द उच्चारण करने में कै शब्द बोलेगा, अब जो आदमी बोलेगा तो वैसा का वैसा और उच्चारण सब स्त्री भी करेगी, कै को कै बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्त्री कुछ और बोले पुरुष कुछ और बोले, गले के स्वर के हिसाब से भले ऊंचा नीचा स्वर हो जाए लेकिन शब्द तो वैसे ही उसी प्रकार कहना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ने वाले भी बी को बी बोलेंगे और हिंदी में लिखेंगे तो बी को बी हिंदी में अपन भी लिखेंगे, उनकी लेखनी अलग है बी लिखने की और हमारी बी लिखने की लेखनी अलग है, लेकिन बी पढ़ने में फर्क क्या हुआ? इसी प्रकार सर आपसी भेदभाव की निवृत्ति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, तो वहां शुकध्वज राजा ने ज्ञान प्राप्त किया अपनी रानी से। तो रानी से ज्ञान प्राप्त करके भी जीव कल्याण कर सकता है, बेटे से भी ज्ञान प्राप्त करके कल्याण किया जा सकता है, ज्ञान कहीं से भी क्यों नहीं मिले। कपिल जी की माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से ज्ञान प्राप्त करके वो कल्याण का मार्ग अपनाया। अरे बिट्टू अकाल हमारे सामने जमनी और अच्छे मने कहीं ज्ञान देवे। आजकल कोई बड़ा कोई छोटा बालक बड़ी ज्ञान की बात करे तो उल्टे उपदेश देना, तू मने कहीं ज्ञान करे तू, अरे तू आटो नहीं खाए जी तो मैं लून खा लियो, उल्टा अहंकार भर जाए तो ऐसे कोई मिल सकते मिला नहीं। पर जो अहंकार की निवृत्ति होने के बाद में ही वो ज्ञान आएगा, उसके पहले आने वाला नहीं। जिस बर्तन में कोई सामान पहले रखा है वो खाली करो तभी उसमें दूसरा सामान भर सकोगे। अगर कटोरी में घी भरा हुआ है तो घी तेल लेना है उस कटोरी को पहले खाली करना पड़ेगा, घी को तभी तेल आएगा, उसमें चीनी लेनी है तो तेल को खाली करना पड़ेगा तभी चीनी आएगी, मतलब आगे जो चीज उसको खाली करो, अगर दूसरी चीज लेनी है तो अहंकार है इसको छोड़ोगे तभी दूसरे ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी, उसके बिना ये चीज होने वाली नहीं है। आगे के प्रसंग में धर्मशील राजा का प्रसंग बता रहे हैं, धर्मशील राजा के एक राजा का प्रसंग है, सदगत सहज भगत रसंग, भक्ति का रंग उस पर भी लगा, गुरु महाराज की कृपा से गुरु की सेवा की, उसी कारण से पत्नी के कारण से उस राजा को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। इसमें सभी औरतों के माध्यम से पुरुष को जो रास्ता मिला है उसको एक प्रधानता से बता दे कि ये शक्ति है, महिला शक्ति है, ये परमात्मा की बोध शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, विवेक शक्ति है। तो ये स्त्रियों से कोई अगर उनको छोटा समझ करके कि उनके परवाह नहीं करता तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान करके उनसे भी इस चीज का ये आदर करके ग्रहण करना चाहिए। एक राजा के दो औरतें थी, जुगल नार था एक दुआगण। अब दो औरतों में से एक जो रानी थी वो तो राजा की प्यारी रानी, दूसरी थी दुहागण, मतलब उपेक्षित त्याग की हुई। अब छोटी रानी से प्रेम करता, दूसरी रानी की पूर्वाही नहीं, पूछताछ नहीं है, अब जो त्यो करके थोड़ा बहुत अनाज दे दे उसे, अपने पेट का गुजारा वो चला रही है, लेकिन है बड़ी धर्म मार्ग में लगी हुई बड़ी रानी, छोटी बड़ी रानी रूप मान करके चलेगा अपने, तो सुहागण दुहागण क्या करना, कोई पति तो जीवित है आज मरा हुआ तो है नहीं, इसलिए द्वारा वो विधवा तो है नहीं, लेकिन राजा अपनी छोटी रानी के वशीभूत है, तो छोटी रानी राजा के पास प्यारी रहती है, दूसरी की उपेक्षा है बड़ी रानी की, इसलिए वो ज्यों त्यों करके एकांत में महल में बैठी अपना जीवन बिताती है। राजा के सुख वैभव बहुत है, धन संपत्ति खूब है, नौकर चाकर भी सब आज्ञाकारी है, परंतु कमी है तो एक उस राजा के बेटा नहीं है, पुत्रहीन, द्रव्य बहुत भंडारा, बेटा नहीं है, धन के खजाने भरे हुए हैं। राजा ने विचार किया कि चलो धर्म पुण्य करोगे जिससे हमारे बेटा हो जाए तो अच्छी बात है। अब एक बार वो बहुत सा धन साथ में लेकर के कई गाड़े जोत करके देशांतर में गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, बड़ी रानी घर पर छोड़ दी, उसको तो पूछ नहीं कौन, छोटी रानी को अपने साथ में लिया, स्त्री के वशीभूत हुआ वो राजा, अब जैसी स्त्री कहे वो वैसा ही वो काम करे, दूसरी कोई बात नहीं कहे। तीर्थों पर गए, जहां जहां उनको ठीक लगा वैसे तीर्थों पर उन्होंने तुलाधार बनकर द्रव्य लुटाया, रात अपने क्यों कह तोल करके, अपने बराबर तोल करके सोना चांदी लोगों को दान दिया, द्रव्य लुटाए, तुलादान कह नहीं तो तुलादान तुलादान किया। अब जैसे स्त्री कहे जैसे करे, गया जी में भी गए, प्रयागराज में गए, द्वारका भी गए, और वहां वहां उन्होंने इस प्रकार बहुत से दान दिए। राजा अपनी कुछ रानी के साथ मस्ती से घूम रहा है, हंसी खुशी हो रही है, मौज से हो, कितना दिन निकले कितने महीने लगे किसी को पता ही नहीं, आराम से खुशी के समय निकलते हैं उनका कोई पता नहीं रहता है, लेकिन दुख का समय जिनका निकलता है उनका थोड़ा समय भी बहुत लंबा हो जाता है। जुगल रुदन नार करुणा लगन विलरत भवन उदास, हे प्रभु पापस कवन पुर में नाश। बड़ी रानी घर पर बैठी बेचारी, कोई उसे मिलने जुलने के लिए भी राजा उनको किसी को आने देता ही नहीं उसके पास में, कोई मत जाओ इसके पास, अरे तू नहीं बोले नहीं बोल बाबा को दूर से आवे तो नहीं, इस प्रकार उसकी पूरी बेचारी की पाबंदी लगा रखी, कोई उसके पास में जाता नहीं, बेचारी बेटी बैठी बैठी रो रो करके और भगवान का नाम लिया करती थी, घर में उदास बन बैठी रहती, भगवान से विनती, हे प्रभु मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप के कारण से इस पूरे नगर में मुझे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं मिल रहा है, और कितना मेरा जीवन है वो कब मेरे जीवन का अंत होगा प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करो कोई मुझे अवलंबन प्रदान करो, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। इस प्रकार वहां बैठी रोती 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 बेचारी अपना समय बिता रही थी। अब जब समय पूरा कब हो कौन जाने, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। ऐसे करते करते एक बार की बात, एक कोई अच्छे महात्मा उस नगरी में चले आए। महात्मा जी का आगमन हुआ, एक उपासक गुरु बलि सारे, रानी कही उपासक दासी, सुन के हरिजन भय उदासी। अब महात्मा जी नगर में आए, वहां सत्संग चला, एक रानी राजा उस रानी के पास में रहने वाली सेविका थी बेचारी, उस परिचारिका ने जाकर के महात्मा जी के दर्शन किए। अब महात्मा जी के दर्शन किए और अब वो भी बेचारी अपने स्वामिनी के पास में रह करके उनके दुख दर्द से बेचारी उसका भी कलेजा बड़ा दुखी हो गया था। उसने जाकर के महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, रोने लगी। महात्मा जी ने कहा, बेटी रोती क्यों है, क्या बात हुआ, क्या बात हो गई। उसने बता, महाराज यहां तो सभी नगरवासी लोग तो आपका दर्शन पा करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं, लेकिन एक मेरी रानी साहिबा है वो आपके दर्शन से वंचित रहेगी, उनका कल्याण कैसे होगा, इसलिए मुझे दुख आ गया। क्यों, क्या कारण बता, सारी बात बताई, कैसे राजा ने त्याग दिया और रानी वहां बैठी है, अकेली है, कोई लोग उसके पास जाते नहीं, बोलते नहीं, बात नहीं करते, केवल मैं ही कभी कभार उनके पास में जाती हूँ, सेवा करती हूँ, उनका दर्द देख करके, दुख देख करके मैं भी बड़ी दुखी हो जाए, तो और मैं कुछ कर नहीं सकती। और संत महापुरुषों के दर्शन यदि किसी को मिल जाते हैं दुखी प्राणी को, तो उसे आत्मा में शांति मिल जाती है। दर्शन किया सबे अग जावे भक्ति उदय घटमाई, ये होता है। तो संत महापुरुषों के दर्शन में ये बात बताई है, तो अगर आपके दर्शन उस रानी जी को हो जाए तो वो तो बात तो आती है नहीं, आप कृपा करके वहां पधार करके उनको दर्शन दे दो, उनका बेचारी का भाग्य बदल जाए। रोना धोना रात दिन चल रहा है तो उसको आपके वचनों से संतोष हो सकता है, आप कृपा करके उसको धैर्य दिला दो। रानदासी की बात सुनी महात्मा जी ने, बेचारा अच्छा ऐसी बात है, अपनी भगत जान के इंद्र दासी संग पधारे मंदिर। ऐसी अगर भगवान के लिए जिसके आंसू गिर रहे हैं ना, वो तो मेरी अपनी है, खास मेरी है, क्योंकि भगवान के लिए, मैं भी भगवान के लिए हूं और वो भी भगवान के लिए रोती है, तो बस सुजनो, संसार के लिए तो हमारे आंखों में आंसू बहुत आते हैं, पर भगवान के लिए हमारे आंखों में आंसू नहीं आते। भगवान के लिए कौन रोता है, संसार के लिए मारे बेटा कोनी रहे, हाय रे मारे धन कोनी रहे, मारे नौकरी कोनी लागी रहे, मारे तो वो कोनी, फलाना कोनी, ढेंगड़ा कोनी, संसार के लिए खूब रोना होता है, पर हम परमात्मा के लिए नहीं होता है। पर महात्मा जी को मालूम पड़ा भगवान के लिए वो रो रही है बेचारी, तो अपने होने के नाते महात्मा जी बिना बुलाए उस दासी के साथ महल में पधार गए। पधारे बिंदर जन परमार्थ नमो सदाई, तारण जीवा चिन्ह सदाई। जो सदैव जिन महापुरुषों का जीवन परमार्थ के लिए हुआ करता है, ऐसे महापुरुषों ने सहज में ही उस भाई के भावों को परख लिया। सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्ष है मेह, परमार्थ के कारण चारों धारी देह जो बात, परमार्थ भाव जागृत हुआ, देखा चले गए महात्मा जी। अब महात्मा जी का जो ही उस भाई ने रानी जी ने दर्शन किया, मिल नीर निमीनु सूर पंकज दर्श परसन यू लयो, मिल ब्याल चंदन सार पारस मिल्या कागज सो भयो, और पुनि कर्त वंदन हर्ष मन तन भाव भक्त बधावही, अनुकर्म संज्ञा सहित या सनदास दास दिखावही। अब पानी जैसे तड़पती मछली को पानी मिल जाता है, और मछली को कितना आनंद आता है। कमल जो मुरझाते हुए को यदि सूर्य दिख जाता है तो कमल खिल जाता है। इसी प्रकार उस रानी ने जो ही महात्मा जी के दर्शन किए, एक हृदय रूपी कमल उसका प्रफुल्लित हो गया, कली कली खिल गई बेचारी की। सर्प को जैसे कोई चंदन मिल जाए तो एकदम जलते हुए शरीर में ठंडक आ जाती है और लोहे को जैसे पारस मिल जाता है तो सोना बन जाता है। इसी प्रकार वो मन में सोचे कि मेरा कार्य आज सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज ऐसे महात्मा के दर्शन मिल गए, मैं निहाल हो गई। उसने वंदन किया महात्मा जी को खुशी पूर्वक, हर्षित होकर के मन तन वचन से भाव से उसने बारंबार महापुरुषों के चरणों का वंदन किया और भावना के द्वारा ही महापुरुषों का बधावा किया। हो तो बधावना कहां से सामग्री लेकर के आवे, बेचारी परित्यक्ता है तो कुछ है ही नहीं। भाव के द्वारा प्रार्थना कर ली, भाव के द्वारा पूजा कर ली, भाव के द्वारा चरणों तक बना लिया, भाव से उनके चरणों में वंदन करने लगे। आसन दिया महात्मा जी को विराजमान करने के लिए और आप दास भाव से उनके सामने विनम्र होकर के मस्तक झुका करके बैठ गए। अब वो बैठ करके कहने लगी है, हे प्रभु कूण सराप भंवर कूप कंटा लग्यो, नमो छुड़ावण याप जन्म जन्म तारण गुरु, प्रेम प्रभाव प्रकाश जनता को दीक्षा दई, राम मंत्र विश्वास ब्राह्मण सुख दिशे अलप, दिवस विराजे चार सदन परस पावन कियो परम पावन कियो, रानी मोक्ष विचार कर कारज हरिजन चले। रानी ने अपने दुख दर्द की कहानी सब महात्मा जी को कह करके सुना दी और संतों के दर्शन से मिलने वाले सुख की भी बात बता दी। संसार के भोग वासना की कोई मन में इच्छा नहीं, ये बात उसने निवेदन की। तो महाराज आप संसार के बंधन से जीव को छुड़ाने वाले हो, जीव का कल्याण करने वाले हो, बात समझ में आ गई। महापुरुषों ने उसी समय सामने बैठा करके और योग्य पात्र समझ करके भगवान के नाम की भगवान नाम की गुरु दीक्षा प्रदान कर दी, उसे शिष्य बना लिया, दिशिष्य बना लिया, जनता को दीक्षा दी, प्रेम का प्रकाश पहचान करके और राम नाम का मंत्र दिया और कह दिया कि इस मंत्र का तुम जप करती रहो, इस मंत्र के जप से आने वाला जो आनंद मिलेगा, सारे ब्रह्मांड का सुख इसके सामने तुच्छ हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें जो आनंद मिलेगा तब वो आनंद सुन, जब तक दूसरे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है तभी तक संसार का दुख दुख है, दुख दे रहा है। जब अपने आप में आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो संसार का दुख याद ही नहीं आएगा। जो आ गया महाराज, उसने वंदन किया महाराज के चरणों में, चार दिन तक महाराज उठे विराजमान रहे, वहां विराजमान रहे और उस रानी के मकान को पवित्र कर दिया और सोचा कि रानी आज मुक्ति के मार्ग पर बढ़ चुकी है, धन्य भाग है, इसका जीवन सफल होगा और भगवान कृपा करके तुम्हारा मंगल करे, जीवन में आनंद ही आनंद हो, ऐसी बात कही और संत महात्मा वहां से हरि नाम का स्मरण करते हुए चले गए। भगवान के शरणागत बनी हुई रानी हरि नाम का स्मरण करने